الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो बीच में कुछ गैप के साथ जो कि हज की छुट्टियों की वजह से भी था और कुछ सफर की वजह से भी बीच में एक गैप आया, बीमारी की वजह से भी आया। तो उसके बाद फिर हम ये क्लास आज से रिज्यूम कर रहे हैं जिसमें हम सूरह माईदा की तफसीर पढ़ते हैं मआरिफुल कुरआन की जिल्द नंबर 3 से, और तीसरी आयत ही अभी चल रही है इसके अंदर जिसके मआरिफ व मसाइल हम पढ़ रहे थे और सफ़ा नंबर 37 पर थे, 37, जिसमें इस वाली आयत, बल्कि आयत तो एक ही है लेकिन इस आयत के इस हिस्से की तफसीर हम पढ़ रहे थे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वा अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया। उर्दू में तो फिर दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुकम्मल कर दिया नेमत को। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम बतौरे दीन के। फिर उसके बाद फमन फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन, ये अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी तफसीर में हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आखिरी बात हमने पढ़ी थी वो लिखी थी कि इतमाम नेमत से मुराद, ठीक है, इतमाम नेमत से मुराद मुसलमानों का गलबा और उरूज और उनके मुखालिफीन का मगलूब व मफतूह होना है। कौन से वाले मुखालिफीन का मगलूब होना और मफतूह हो जाना? रोम तो अभी तक फतह नहीं हुआ, फारिस तो अभी तक फतह नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर कौन से वाले मुखालिफीन मगलूब हो गए और मफतूह हो गए, ठीक है, किन के ऊपर मुसलमानों को फतह मिल गया? सबसे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम के खानदान वाले कुरैश और मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द के कबाइल के लोग, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मजीद और कबाइल जो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते थे, उसके इर्द गिर्द रहते थे वगैरह, जैसे कि गज़वाए अहज़ाब के अंदर जिन कबाइल ने मिल करके नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसलमानों के ऊपर अटैक किया था। तो ये सब जो है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन थे इब्तदाई दर्जे में, ठीक है, वरना तो ईसाई और यहूदी तो खैर इस इलाके के यहूदी मगलूब हो गए थे, लेकिन बड़ी ताकत जो थी वो उस वक्त भी ईसाइयों की ताकत और अभी भी ईसाइयों की ताकत बड़ी ताकत जो होती है, ठीक है, वो तो मगलूब अभी भी नहीं हुए, उस वक्त भी नहीं हुए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के जो जाती दुश्मन थे, खानदानी दुश्मन थे, और जो एक्सटेंडेड खानदान यानी कबीला जिसको कहते हैं, कबाइल जिसको कहते हैं, तो वो मगलूब व मफतूह हो गए थे। और इसका जहूर कैसे हुआ था कि मक्का मुकर्रमा की फतह, मक्का मुकर्रमा में नबी अलैहिस्सलाम की अपनी एक्सटेंडेड फैमिली रहती थी ना, तो उसकी फतह हो गई, और रसूम जाहिलियत के मिटाने से और इस साल हज में किसी मुशरिक के शरीक ना होने के जरिए से हुआ। रसूम जाहिलियत के बारे में भी पिछली क्लास में बात हुई थी कि रसूम को मिटाना सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि ये किसी मुआशरे के रग रग और रेशे रेशे के अंदर पैवस्त हो जाते हैं, ठीक है, और लोग इसको जो है ना वो अपनी जिंदगी का एक लाजमी जुज समझना शुरू हो जाते हैं। तो इन रसूम को मिटा देना ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और फिर मुशरिकीन का शरीक ना होने देना, इसका मतलब यह है कि आपकी अथॉरिटी ऐसी कामिल हो गई है कि आप इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर किसी को मना कर सकते हैं कि तुम नहीं आ सकते, है ना। वरना तो और किसी रीजन की वजह से तो मना करना फिर भी आसान होता है, जैसे भाई बीमार हैं आप आएंगे तो आपकी वजह से बीमारी फैल जाएगी, तो उसकी वजह से मना कर देना दोनों का एक्सेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किस बुनियाद पर? सिर्फ इस बुनियाद पर कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल और नबी नहीं माना है वो नहीं आ सकता, ठीक है, वो नहीं आ सकता। उसी को मुशरिक कहते हैं, उसी को मुशरिक कहते हैं, उसी को काफिर भी कहते हैं, उसी को मुशरिक भी कहते हैं। इस बुनियाद पर वो नहीं आ सकता, यही एक बुनियाद थी ना, और कौन सी बुनियाद थी, ठीक है। तो यहाँ अल्फाज कुरान में ये बात भी काबिल नजर है कि दीन के साथ लफ्ज इकमाल इस्तेमाल किया, इस्तेमाल फरमाया गया, और नेमत के साथ लफ्ज इतमाम इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब ये तो कोई अरबीदान जैसे हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह है वही इतनी गहराई में जा करके इतनी तहकीकी मुहक्किकाना नजर रख सकते हैं कि भाई दोनों अल्फाज बजाहिर तो ऐसे लिखा है उन्होंने कि दोनों लफ्ज बजाहिर एक दूसरे के हम माना और मुतरादिफ समझे जाते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया, कोई वजह थी ना। अल्लाह ताला के यहाँ तो एक एक चॉइस ऑफ वर्ड जो है, बल्कि खाली चॉइस ऑफ वर्ड नहीं बल्कि पोजिशनिंग ऑफ वर्ड भी कुरान मजीद के अंदर अहम है। कौन सा वर्ड जो है वो पहले आया है, कौन सा वर्ड बाद में आया है, इसकी बुनियाद पर भी बहुत सारी यानी हिकमतें इसके अंदर पोशीदा होती हैं। तो क्यों ये दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए गए इन दो चीजों के लिए? तो फरमाते हैं कि दर हकीकत इन दोनों के मफहूम में एक फर्क है, जिसको मुफरदातुल कुरान में इमाम रागिब इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह बयान फरमाया है कि किसी चीज का इकमाल और तकमील उसको कहते हैं कि उस चीज से जो गर्ज और मकसूद था वो पूरा हो गया, ठीक है। इकमाल जो आप में से सर्फ वगैरह पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत ज्यादा, वो जानते हैं कि इकमाल जो है ये एक अलग वर्ब फॉर्म से है, एक अलग बाब से है। अकमला युकमिलु इकमालन फहुआ मुकमिलुन, अकरमा युकरिमु इकरामन फहुआ मुकरिमुन, जो वर्ब फॉर्म फोर भी कहलाता है और जो है वो बाबे इफाल भी कहलाता है। और तकमील जो है ये एक स्लाइटली डिफरेंट बाब से है, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन, तो कम्मला युकम्मिलु तकमीलन, ये एक अलग बाब है, ठीक है। तो इन दोनों बाबों में यानी इन दोनों वर्ड फॉर्म्स के मानी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इकमाल जो है ये मुतअद्दी मानी में आता है, ठीक है, यानी किसी दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट करना, और ये जो तकमील का जो है ये अपने अंदर ही जो है वो किसी चीज को मुकम्मल कर लेना, तो अंदर से भी मुकम्मल और दूसरों के ऊपर भी जो एक इफेक्ट है वो भी मुकम्मल करने वाला। तो दो अलग अलग लफ्ज ही हैं। तो हजरत ने यहाँ पे दोनों अल्फाज को इस्तेमाल किया, लेकिन जो कुरान मजीद में जो है वो तो इकमाल का लफ्ज इस्तेमाल है, ठीक है, जो कि यानी मुतअद्दी मानी में जो जो वर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो किसी चीज का इकमाल और तकमील उसको कहते हैं, यानी बेस तो दोनों की सेम ही है ना, कमाल, ठीक है, कमाला, तो बेस दोनों की ही सेम है। तो ये वाला बेस जो है वो दीन के लिए इस्तेमाल किया, दीनकुम के लिए इस्तेमाल किया, ठीक, तुम्हारा दीन। तो कमाला या कमाल उस चीज का गर्ज और मकसूद था ना वो पूरा हो गया, जिस मकसद से वो आया था। तो नबी अलैहिस्सलाम दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी दीन का मकसद क्या है? दीन का मकसद ये है कि उसके ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जब अमल करेगी तो वो जन्नत में पहुंच जाएगी, राइट, ये है ना दीन का मकसद, ठीक है, कि अगर इसके ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अमल करेगी तो वो जन्नत में पहुंच जाएगी, ये मकसद है दीन का। अगर अमल नहीं करेगी तो जन्नत में नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है, चाहे कभी भी ना पहुंच सके, काफिर हो जाए कभी भी ना पहुंच सके, चाहे जो है वो पिट पिटा करके मर मरा करके जहन्नुम के अजाब सह सह करके बिल आखिर पहुंचे अगर दीन पे अमल नहीं कर रही, ठीक है ना, ये दोनों दर्जे हैं। तो मकसद क्या है कि वो पहुंच जाए, सही है, तो ये मकसद जो है पूरा हो गया, यानी दीन की जो जी जैसे पीछे भी बात हुई थी, दीन के अंदर जितनी खराफात थी, जितने वायरसेस थे, जितने मैल फंक्शनिंग जो है वो शयातीन ने इंट्रोड्यूस करा दी थी, वो सब की सब जो है वो रिसेट हो गई, वो सब की सब जो है वो इरेज हो गई। ठीक है, जैसे किसी फोन के अंदर या किसी लैपटॉप के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो जब आप उसको रीसेट कर देते हैं तो ये सारी चीजें जो इसमें से डिलीट हो जाती हैं, और जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपनी ओरिजिनल पाक साफ हालत के अंदर आ जाता है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने मकसद हासिल किया, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर दीन वापस आ गया। अच्छा, लफ्ज इत्माम के मानी क्या है? वो ये है कि अब दूसरी चीज की जरूरत और हाजत नहीं रही, ठीक है, दूसरी चीज की जरूरत और हाजत नहीं रही, तो आगे इसकी इसकी तशरीह बयान कर रहे हैं। इसलिए इकमाल दीन का हासिल ये हुआ कि कानून इलाही और अहकाम दीन के इस दुनिया में भेजने का जो मकसद था वो आज पूरा कर दिया गया। ठीक है, अल्लाह ताला का कानून दुनिया के अंदर पहले भी मौजूद था, लेकिन उसके अंदर गलत सलत चीजें जो है वो शामिल कर दी गई थी। तो अब वो जो कानून था ना, वो कानून जन्नत में पहुंचाने के काबिल नहीं रहा था, वो जन्नत में पहुंचाने के काबिल नहीं रहा था, अब उसको दोबारा इस काबिल बना दिया गया कि उसके ऊपर जो अमल करेगा वो जन्नत में पहुंच जाएगा। अहकाम दीन वही अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला का दीन। अच्छा, इतमाम नेमत का मतलब ये हुआ अब मुसलमान किसी के मोहताज नहीं। क्या मतलब मोहताज नहीं है? कि उनको खुद हक तआला जल्ला शानहु ने गलबा, कुव्वत और इक्तदार अता फरमा दिया, जिसके जरिए वो इस दीन हक के अहकाम को जारी और नाफिज कर सके। यानी इस जुमले से कम क्या चीज साबित होती है? पॉलिटिकल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल माइट, पॉलिटिकल अथॉरिटी, सियासी गलबा, ठीक है ना, यानी उनके पास जो है वो मिलिट्री पावर आ गई, उनके पास जो है वो बाकायदा जिसको कहते हैं जुडिशियल पावर आ गई, ठीक है, उनकी अपनी जो है ना वो यानी जज सिस्टम जो है, अदालतें जो है वो उनकी अपनी कायम हो गई, पुलिस फोर्स उनकी अपनी कायम हो गई जो कि लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करेगी, हत्ता के जो बॉर्डर्स के बाहर दुश्मन हैं उनकी तरफ से भी अगर कोई मसला होगा तो दे विल बी एबल टू हैंडल इट देमसेल्व्स विद देयर ओन मिलिट्री पावर। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से नहीं कर सकते, उनको किसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, किसी के ऊपर जो है डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए थे तो यहूदियों के कबाइल से भी मुआहदे किए थे और कुछ कबाइल से भी, राइट, मुआहदे वगैरह करके जो है ना, और वो गजवा एहजाब के अंदर भी कि जी बाहर से जो ताकतें हमलावर हो रही हैं, तो जो मदीना तैयबा के अंदर नॉन मुस्लिम्स थे तो उनके साथ मुआहदा करके जो है वो उनके मदीना मुनव्वरा को डिफेंड किया गया था। ठीक है, तो अब जो है ना इसकी जरूरत नहीं थी, अब इतना ज्यादा मुसलमानों के पास ताकत आ गई थी कि वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो गए थे इस मामले के अंदर। तो ये इत्माम नेमत ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं कि यहाँ ये बात भी काबिले गौर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला, कि यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि इस आयत में दीन की निस्बत तो मुसलमानों की तरफ फरमाई गई है, दीन की निस्बत यानी दीन अकुम, राइट, तुम्हारा दीन, और नेमत की निस्बत हक तआला की तरफ, नेमती अल्लाह ताला फरमा रहे नेमती, मेरी नेमत, ये नहीं कि तुम्हारी नेमत, या ये नहीं कहा मेरा दीन, अल्लाह ताला ने मेरा दीन नहीं कहा, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारा दीन, और नेमत के लिए मेरी नेमत। ठीक है, तो निस्बत जो है वो भी डिफरेंट है। तो फरमाते हैं कि इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि दीन का जहूर उन आमाल व अफआल के जरिए होता है जो उम्मत के अफराद करते हैं, जो उम्मत के अफराद करते हैं, ठीक है, यानी अल्लाह के बंदे करते हैं। ठीक है, इसी वजह से बंदे जो करते हैं ना वो उनका दीन कहलाता है, यानी दिमाग में जो करते हैं, जो खिचड़ियां पकाते हैं दिमाग के अंदर, जो सोचें इख्तियार करते हैं अपने दिमाग के अंदर, ये दिमाग का अमल होता है, जिसको नियतें भी कहते हैं, जिसको अकायद भी कहते हैं। तो दिमाग में क्या करते हैं ये भी दीन होता है, और हाथ पैर से क्या करते हैं ये भी दीन होता है। ये दोनों चीजें मिल करके दीन बनती हैं, दिमाग के अफआल और जवारह के अफआल। जवारह मतलब जो आपके बदन के राइट लेफ्ट पे पैर और हाथ लगे हुए हैं ना, और कान जो लगे हुए हैं, और आंखें जो लगी हुई हैं, नाक जो लगी हुई है, और जुबान जो लगी हुई है, ये जवारह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हरकतें करते हैं ना, ये दीन होता है। ये दीन जो भी करेगा वो दीन होगा, हत्ता के काफिर जो करता है वो भी दीन होता है। ठीक है, जैसे कि सूरह काफिरून के अंदर है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। काफिरों कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून। ठीक है ना, तो उसमें आखिर में क्या है, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, यानी तुम जो खिचड़ियां पकाते हो ना अपने दिमाग के अंदर, वो तुम्हारा दीन है। जो तुम आमाल करते हो वो तुम्हारा दीन है। और मेरा दीन क्या है, जो मैं आमाल करता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं अकायद रखता हूं, वो मेरा दीन है। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है, तो जो भी इंसान करता है ना वो उसका दीन। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ जाए, अल्लाह करे। ठीक, तो फिर हम जरा कॉन्शियस हो जाए कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे करने से हमारा दीन डिफाइन होता है। क्या हम अल्लाह के बताए हुए दीन को करते हैं, या हम अपनी अकल से सोचे हुए दीन को करते हैं? अगर हम अपनी अकल की बुनियाद पर करते हैं, सोचे पकाते हैं और आमाल करते हैं, तो वो अल्लाह वाला दीन नहीं है, जो कि अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए से भेजा था, वो नहीं है, वो दीन नहीं है। वो दीन तो अलग है, जो कि अल्लाह के रसूल ने बताया। हमने तो अपना एक नया दीन ईजाद किया हुआ है, नाम उसका हम जो भी रख दें अपनी अपने मन को खुश करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो तो आमाल की बुनियाद पर फैसला होगा कि क्या ये वही दीन है जो कि अल्लाह का बताया हुआ दीन है, या ये हमारा अपना इख्तरा किया हुआ दीन है। ठीक है, तो दीन जो है ना, ये हमारे एफर्ट को कहते हैं, हमारे एक्शंस को कहते हैं, ठीक है, हमारी नियतों को कहते हैं। काश के आप लोग लिख भी रहे हो उसको। दीन किस चीज को कहते हैं? हमारी नियतों को, हमारी सोचों को, हमारी फिक्रों को, और हमारे आमाल को। ठीक है, जो कि आप कोशिशें भी कह सकते हैं उसके लिए, ये है, इसको दीन कहते हैं। तो इसका ताल्लुक हमसे है। ठीक है, इसका ताल्लुक किसके है, किसके साथ है? हमारे साथ, यानी अल्लाह के बंदों के साथ। और नेमत क्या चीज होती है? ये नेमत जो है ना, इसका ताल्लुक परवरदिगार के साथ है। ठीक है, नेमत की तकमील बराह रास्त हक तआला की तरफ से है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम अपनी इंग्लू जुबान के अंदर ट्रांसफर करें, इंग्लिश प्लस उर्दू वाली जो हमारी जुबान होती है, जिसमें अंग्रेजी के भी बहुत सारे अल्फाज शामिल होते हैं, तो ये क्या है, इसको क्या क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नेमत के लिए? हमारा काम क्या है? कोशिश कर। और अल्लाह का काम क्या है? नहीं, वो तो आपने ट्रांसलेट कर दिया, हम तो मफहूम के लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, रिजल्ट्स। एग्जैक्टली, रिजल्ट्स, रिवॉर्ड। ये रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स एंटायरली अल्लाह के हाथ, एंटायरली अल्लाह के हाथ। ये अल्लाह का काम, रिजल्ट्स उसके अंदर डाल। ठीक है, इफेक्ट डालना, रिजल्ट डालना, रिवॉर्ड डालना, ठीक है ना, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है, हम करते क्या है, हम सोचते क्या है, ये हमारे हाथ में, हम इसके मुकल्लफ हैं, हम रिजल्ट्स के मुकल्लफ नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे बस में ही नहीं, रिजल्ट्स हमारे बस में ही नहीं, हम रिजल्ट्स को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये तो अल्लाह के कंट्रोल में है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने रिजल्ट्स दिए अपने हबीब अलैहिस्सलाम को, इतना लंबा अरसा जो नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दी और मेहनतें करी और अपनी धुन में लगे रहे, अपनी धुन में लगे रहे, चाहे कोई सुने ना सुने, कोई गालियां दे, कोई जो है वो थूक फेंके, कोई जो है वो और धूप में खड़ा कर दे, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के साथ देने वाले कितने लोग थे जो के दुनिया से जाते गए जाते गए जाते गए। ऐसे नहीं है कि सारे आखिर तक जो है वो आप के साथ मौजूद रहे रिजल्ट्स को देखने के लिए। हमजा रहता ना, रिजल्ट्स देखे बगैर दुनिया से चले गए, ठीक है। और कितने बड़े बड़े हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से चले गए, रिजल्ट्स देखे बगैर चले गए। कितने बड़े बड़े सहाबा, कितनी नबी अलैहिस्सलाम की जौजा मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा रिजल्ट्स देखे बगैर दुनिया से चली गई। नबी अलैहिस्सलाम की चार में से तीन बेटियां रिजल्ट्स देखे बगैर दुनिया से चली गई। दे डिड नॉट वेट, उनको जिंदगी की मोहलत नहीं मिली कि वो मोहलत यानी दुनिया में रह करके रिजल्ट्स देखें हमारे अब्बा हुजूर को क्या कामयाबी मिल रही है, क्या उनका जो है वो सिक्का जो है वो बैठेगा यहाँ पर, लोग जो है वो आगे पीछे फिरेंगे, लोग जो है वो उनको कंधों पे उठाएंगे और ये करेंगे। नहीं, दुनिया से चले गए। तो क्या है हमारे लिए इसके अंदर, कि पहली बात तो ये कि हमारे हाथ में सिर्फ हमारी सोचें और हमारे आमाल हैं और बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में, वो हमारे हाथ में तो क्या अल्लाह के नबी के हाथ में नहीं थे, तो हमारे हाथ में कहां से आ सकते। और तीसरी बात ये कि रिजल्ट्स का इस दुनिया के अंदर मिलना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सहाबाए कराम से बढ़ के तो हम नहीं हो सकते इंपॉर्टेंट, कि हमें तो मिलने चाहिए, उनको ना मिले तो कोई बात नहीं, हमें तो जरूर मिलना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, ठीक है। नहीं भाई, हम तो किसी किसी भी दर्जे में नहीं आते, तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हो सकता है अभी दुनिया से बाय बाय राइट निकल जाए उधर अगली जहान की तरफ, और रिजल्ट्स जो है वो आएंगे जब भी आएंगे, अल्लाह आलम कब आएंगे, ठीक है। तो ये उसूल की बात है, इन उसूलों को हम फरामोश ना करें तो हमारी बेहतरी है, इसके अंदर हमारे फायदे हैं। इसके अंदर शैतान जाहिर है मेहनत में लगा हुआ है अपनी, उसकी मेहनत क्या है, इन उसूलों को हमसे भुलवा दे, और वो मेहनत में लगा हुआ है लगा हुआ है। जिसके साथ भी वो कामयाब हो जाता है वो शैतान का बंदा बन जाता है, और फिर वो उसूलों से हट करके वो कुछ और चीजों के तहत अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। उसूल यही है जो कि अल्लाह के कुरान ने इस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है। और समझ में हमारे कैसे आते हैं, दरस कुरान से समझ में आते हैं, ठीक ना, वरना तो आप पढ़ लेते इस वाली आयत को, ठीक है, इतना समझ में आता। बहरहाल ये अल्लाह का निज़ाम है, सुबह भी काफ़ी इसके ऊपर बात हुई थी खवातीन की क्लास में। अच्छा, इस तकरीर से ये भी वाजह हो गया कि एक माले दीन आज होने का ये मतलब नहीं है, यानी वो जो अरफा का दिन था उस दिन जो एक माले दीन हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम का दीन नाकिस था अब जो है वो कामिल हुआ है, बल्कि जैसा कि तफसीर बहर मुहीत में हवाला कफ्फाल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह नकल किया है कि दीन तो हर नबी व रसूल का उसके जमाने के एतबार से कामिल व मुकम्मल था, ठीक है। दीन कामिल व मुकम्मल था उस नबी के जमाने के एतबार से। तो क्या मतलब कि ये जो दीन का इकमाल और तकमील भी है ना, ये भी टाइम एंड प्लेस पे डिपेंड करता है, टाइम एंड प्लेस पे डिपेंड, इट्स नॉट एब्सोल्यूट कि हर जमाने में एक तकमील है दीन की, नहीं, ये चेंज होती रही, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम के दीन का जो 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 इंग्रेडिएंट्स थे, जो उसकी शक्लो सूरत थी, तो वो डिफरेंट थी, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक जो है वो डिफरेंट हो चुकी थी। अब इसमें डिफरेंस क्या था, अकायद का डिफरेंस नहीं था, फैक्ट्स का डिफरेंस नहीं था, बल्कि आमाल का डिफरेंस था, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के आमाल जो थे वो बहुत ही मिनिमल किस्म के थे, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के आमाल थोड़े से और दीन के अंदर ऐड कर दिए गए, और इस तरीके से जो है वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस जो है वो चलती रही चलती रही चलती रही। तो हर नबी के जमाने का दीन उस जमाने के हिसाब से कामिल था, यानी जिस जमाने में जिस पैगंबर पर कोई शरीयत व दीन अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया उस जमाने और उस कौम के लिहाज से वही कामिल व मुकम्मल था, ठीक है। लेकिन अल्लाह जल्ला शानहु के इल्म में ये तफसील पहले से थी कि कि जो दीन उस जमाने और उस कौम के लिए मुकम्मल है वो अगले जमाने और आने वाली कौमों के लिए मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर बाकायदा यानी इंसानों को जो है ना वो उनके हालात वगैरह जो है वो चेंज किए हैं। ठीक है, वो उनकी अकल भी कुछ हद तक किसी तरीके से जाहिर है जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती गई, चीजें इजाद होती गई, हालात तब्दील होते गए, ठीक है, तो इंसानों की जो है वो नॉलेज भी उसके हिसाब से चेंज होती गई। तो नॉलेज के ऊपर जो है वो इंसान की अकल डिपेंड करती है, जितनी उसकी नॉलेज होगी उसके हिसाब से उसकी अकल होगी। ठीक, तो ये तब्दीलियां जो है वो अल्लाह ताला इंसानों के हालात में और इंसानों की बस अपनी अपने नफ्स के अंदर इंसानों के अल्लाह ताला चेंज करते रहे, तो उसी के हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो दीन लाते रहे हैं हर आने वाले नबी के साथ। तो अल्लाह ताला फिर उसके हिसाब से क्या करते थे कि पिछले वाले दीन को मनसूख करके दूसरा दीन व शरीयत नाफिज की जाए। ठीक है, तो जो नबी आता था वो फिर या तो पुराने वाले दीन को रीस्टैब्लिश ही कर रहा होता था, जैसे बनी इसराइल के 10,000 से ज्यादा जो अंबिया आए हैं, हर नबी जो है वो नई शरीयत लेकर के नहीं आया, बहुत सारे नबी जो है वो पुरानी शरीयत ही को रिन्यू करना, लोगों को दोबारा से रिमाइंड कराना, क्योंकि शयातीन जो होते थे हर जमाने में, शयातीन भी हमेशा रहे, तो वो जो काम करते थे वो वही दीन की डेफिनेशंस को खराब करना। ठीक है, तो नबी आकर के रीसेट करते, हर नबी आके रीसेट कर रहा है, हर नबी आकर रीसेट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नबी जो है वो फिर नए अहकाम भी लेकर के, जैसे मूसा अलैहि सलाम जैसे अंबिया, वो नए अहकाम भी लेकर के आए। ठीक है, बखिलाफ है शरीयत इस्लाम की, लेकिन शरीयत इस्लाम के साथ मामला क्या हुआ कि जो सबसे आखिर में नाजिल की गई कि वो हर जहत और हर लिहाज से कामिल व मुकम्मल है, ना वो किसी खास जमाने के साथ मखसूस है। ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद जितने भी जमाने आएंगे वो उन तमाम जमानों के लिए, ठीक है, सिर्फ जो है वो 1400 साल पहले वाले जमाने के लिए, जैसे कि मुल्हिदीन या यहूद नसारा ये बातें करते हैं कि ये तो 1400 साल गुजर गए, अब कहाँ से चीजें चेंज हो जाती हैं, तो दीन भी जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो किसी ना खास जमाने के साथ मखसूस है और ना किसी खास खित्ते, मुल्क या कौम के साथ, कि ये सिर्फ अरबों का दीन था, अजमियों का ये दीन नहीं था, या ये सिर्फ जो है वो सरजमीन अरब का दीन था, ये फारिस और रोम का दीन नहीं है, अफ्रीका का दीन नहीं है, वहां पे ये इट्स नॉट एप्लीकेबल या इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि कयामत तक हर जमाने और हर खित्ते और हर कौम के लिए ये शरीयत कामिल व मुकम्मल है। ठीक है, ये बात आपके लिए इंशाल्लाह सारे के लिए, किसी के लिए भी नई नहीं होगी, सब जानते हैं, लेकिन जरा हम इसको माने भी, ठीक है, और सोचे भी इस तरीके से कि अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं, जो दीन है अल्लाह के अहकाम, ये ऑब्सोलीट नहीं हो गए। ठीक है, ये जो है वो यानी पुराने नहीं हो गए कि अब नया जमाना है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और अब तो जो है वो पता नहीं डीप नॉलेज का जमाना है और स्पेस साइंसेस का जमाना है और ये जमाना है वो जमाना है, अब जो है ना ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, जो भी जमाना है दीन के अहकाम जो है वो उसके अंदर एप्लीकेबल हैं, और इस काम के लिए अल्लाह ताला ने उलमा को जो है ना वो सफिशेंट इल्म दिया होता है, सफिशेंट नॉलेज दी हुई होती है, वो ये फिर हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन की तफसीलात समझा रहे होते हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तीसरा इनाम जो इस उम्मत मरहूमा के लिए इस आयत में बयान फरमाया गया है वो ये है कि इस उम्मत के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने तकवीनी इंतखाब के जरिए दीन इस्लाम को मुंतखब फरमाया, जो हर हैसियत से कामिल व मुकम्मल है और जिस पर निजात का इन्हिसार है। तो तकवीनी इंतखाब के जरिए से मतलब क्या
स्टार्ट
कि
करें ना।
तो तकवीन इंतखाब का मतलब ये है कि बस अल्लाह ताला का ये फैसला है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई एक्स्ट्रा काम किया उसकी वजह से उसको यहूदियत वाला दीन मिल गया, किसी ने कोई और काम किया तो उसकी वजह से उसको ईसाइयत वाला दीन मिल गया, और किसी ने कोई और काम किया तो उसकी वजह से उसको इस्लाम का वाला दीन मिल गया, बस अल्लाह ताला का ये फैसला है। ठीक है ना, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, ये अल्लाह ताला का फजल है जिसको चाहे अल्लाह ताला दे। ठीक है, तो अल्लाह ताला का फजल कि दीन इस्लाम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को मिला, और ये इस्लाम ही की शक्ल में ही रहेगा। पिछले जितने दीन थे वो भी इस्लाम ही थे, वो भी इस्लाम ही थे। ये नहीं कि उनको इस्लाम नहीं मिला, उनको जो है वो किसी और नाम का दीन मिला था, नहीं, सारे दीन इस्लाम थे, लेकिन उन लोगों ने उसकी हिफाजत नहीं करी। तो वो जो तब्दील उसके अंदर उन्होंने चीजें कर दी ना, तो अब वो इस्लाम रहे नहीं, अब वो इस्लाम रहे नहीं, वो यहूदियत बन गए, कोई जो है वो बुद्ध मत बन गया। ठीक है ना, उसकी तब्दीली, उन्होंने बुधा को जो है वो खुदा का मर्तबा दे दिया और उसका नाम जो है वो बुद्ध मत बन गया। था तो वो भी इस्लाम पहले, ठीक है, लेकिन फिर वो बुद्ध मत बन गया, वो इस्लाम नहीं है। बिकॉज इस्लाम का मतलब तो एक सर्टन सेट ऑफ डेफिनेशंस है ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप डेफिनेशंस को चेंज कर दें फिर भी वो इस्लाम ही रहेगा। एब्सोल्युटली नॉट, अब तो वो कोई नई चीज बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर आप बिरयानी बनाते हैं, खवातीन भी शायद इस क्लास में बिरयानी बनाए, अब आप बिरयानी के अंदर जो है ना वो बिरयानी का शान मसाला जानने के बजाय जो है वो निहारी का शान मसाला डाल दें और कहें कि नहीं, मैंने बिरयानी ही बनाई है, राइट? तो देखने वाला क्या कहेगा, वो कहेगा भाई ये बिरयानी नहीं है, अब ये कुछ और चीज बन गई है, इसको मैं बिरयानी नहीं कह सकता। ठीक है ना, तुम बोलते रहो बिरयानी, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एज बिरयानी, है ना, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई फूड, मेरी बिरयानी जो है ना वो बड़ी फेवरेट गजा है और मैं उसके साथ खेल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसके साथ निहारी मसाला डालो और फिर भी उसको बिरयानी कहना चाहो, मैं नहीं मानता कि बिरयानी है। बात समझ में आ रही है भाई, बिरयानी तो बिरयानी रहेगी तब वो बिरयानी बनेगी ना, शान मसाला हो या मेहरान मसाला हो या जो भी मसाला हो, अहमद का मसाला हो, वो बिरयानी वाला डालेंगे तो वो बिरयानी बनेगी। हमारे मोहसिन भाई भी मौजूद है, उम्मीद है कि दुबई वाले मोहसिन भाई हैं, इनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता है हमसे। ठीक है, तो यही मामला जो है वो दीन का भी है, ये नहीं हो सकता कि आप दीन में चेंज करें और फिर भी आप कहें कि नहीं ये अभी भी इस्लामी है, नहीं ये अभी भी इस्लाम नहीं है, ये कुछ और बन चुका है, अब हम उसको इस्लाम नहीं कह सकते। ठीक है, तो दूसरी कौमों के साथ ये हुआ, उन्होंने अपने दीन को इस्लाम से चेंज करके यहूदियत बनाया, ईसाइयत बनाया, मजूसियत बनाया, बुद्ध मत बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया। ठीक है, लेकिन इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने तकवीनी तौर पर ऐसे अफराद अता फरमाए, सहाबे का ऐसे अफराद अता फरमाए कि जिन्होंने किसी और चीज को अहमियत नहीं दी सिवाय इस चीज के, यानी इस चीज के मुकाबले में किसी और चीज को ज्यादा अहमियत नहीं दी कि इस दीन की हिफाजत करनी है। जैसे हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें ये दीन सिखाया है, हमने इसको वैसे ही रखना है। ठीक है ना, कर लो जो करना है, राइट? हम अपनी जान दे देंगे, हम अपना खानदान बर्बाद कर देंगे, हम अपना घर बार छोड़ देंगे, हम अपनी औलाद को जो है वो कुर्बान कर देंगे, हम दीन में तब्दीली नहीं आने देंगे, राइट? और ये उनके वरसा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही अमल करे चले, आज भी यही अमल करे चले, और यही है वरसा नबी अलैहिस्सलाम, यही है नबी अलैहिस्सलाम के सही वारिस जो कि दीन की हिफाजत करने वाले। इसी वजह से इस उम्मत के पास अभी भी इस्लाम मौजूद है। ठीक है ना, जैसे कि वो बिरयानी है, कोई कुक जो है वो, उसके पास अभी भी बिरयानी मौजूद है, क्यों भाई? उसने बिरयानी की हिफाजत करी है। अब ये बिरयानी की मिसाल अब जहन में आ गई तो आपके सामने यही है, मुझे लगता है दादा बीमारी की वजह से बिरयानी ज्यादा याद आ रही है आजकल। बिरयानी में होता है ना, सॉरी बीमारी में होता है ना, कि आप इतने खाने वाने अच्छे नहीं खा सकते, पेट वेट भी खराब हो जाता है एंटीबायोटिक्स की वजह से। खैर, तो मिसाल से उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई यही है काम, असल काम तो यही है दीन की हिफाजत। तो कहते हैं कि अच्छा, पिछली उम्मतों ने दीन में तब्दीली कर दी, भाई कौन सी वाली तब्दील कर, किस चीज को तब्दील किया, ये जरा आपसे पूछे बगैर हम मुनासिब नहीं समझते आगे बढ़े। पिछली उम्मत के लोगों ने अपने दीन में जो तब्दीलियां करी, तो दीन की कौन सी वाली बातों में तब्दीलियां कर, ये कोई आप में से अगर बताना चाहे कौन सी वाली बातों में तब्दील कर, क्योंकि दीन जो है ना ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए नॉलेज को कहते हैं ना, इट्स एन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना, दीन तो एजुकेशन सिस्टम है, तो भाई एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी चीजों के बारे में एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है,
तो उन्होंने किन चीजों के अंदर चेंज करी और किन चीजों में चेंज नहीं करी। चले माशाल्लाह जवाब तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, अकायद में चेंज करी, ठीक है ना, यानी नजरियात में, सोच में, अकायद में, ठीक है, यानी जिसको अहकामात भी कहते हैं कि जो हलाल था उसको हराम कर दिया, जो हराम था इसको हलाल कर दिया, इसको ही अकीदे में चेंज कहते हैं। अहकामात में चेंज करना भी इसको कह सकते हैं, अकायद में चेंज करना भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, चलें ये तो माशाल्लाह सबने सब तैयार बैठे हुए थे सही जवाब देने के लिए, ठीक, खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज में उन्होंने चेंज नहीं किया, किस चीज में उन्होंने चेंज नहीं किया, ये सवाल शायद इतना आसान ना हो। जी रिवायतों में चेंज नहीं किया, नहीं, रिवायतें जिनको आप रिवायतें कह रहे हैं वो तो दीन में थी नहीं ना, वो तो लोग बना देते हैं, वो दीन तो नहीं होता ना। उन्होंने किस चीज में चेंज नहीं किया, आमाल में चेंज नहीं किया, नहीं, आमाल में चेंज तो जब उन्होंने आमाल की डेफिनेशन में चेंज कर दिया तो आमाल में भी चेंज हो गया। अल्लाह की मार्फत में चेंज नहीं किया, तो भाई अल्लाह की मार्फत तो अकीदा सही होगा तो अल्लाह की मार्फत मिलेगी, जब उन्होंने अकीदा ही बदल दिया तो अल्लाह की मार्फत में कैसे चेंज नहीं किया उन्होंने, अल्लाह की मार्फत तो फिर गई, हाथ से निकल गई अल्लाह की मार्फत, ठीक है ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई ना अल्लाह की मार्फत, यानी उनके हाथ से निकल गई। मैं तो पूछ रहा हूँ किस चीज में उन्होंने चेंज नहीं किया, आमाल में चेंज नहीं, आमाल में तो किया ना, डे टू डे विजिबल प्रैक्टिसेस नहीं, जब अखलाक अखलाकी दीन को चेंज नहीं किया ना, ये अखलाकियात भी जो है ना वो कॉन्सिक्वेंशली चेंज हो जाते हैं, जाहरी
जानना
इबादत यानी। चलो भैया आपको अच्छा, शुक्र, अल्लाह को मानने में जाहिर तरीके में नहीं, ठीक है, अल्लाह को मानने के तरीके में तो उन्होंने चेंज कर दिया, रसूल ने जैसे बताया था अल्लाह को ऐसे मानो वो तो उन्होंने चेंज कर दिया, किसी ने कहा अल्लाह का बेटा है, किसी ने कहा अल्लाह की बेटी है, किसी ने कहा अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह मगलूब है, किसी ने कहा अल्लाह ताला के बारे में कुछ बनाया कुछ बनाया कुछ बनाया, तो इतना कुछ तो चेंज कर दिया। देखिए उन्होंने किस चीज में चेंज नहीं किया जो कि उनके पास आज भी मौजूद है जैसा उनको मिला था, क्या चीज है वो, कुरान, कुरान उनके पास कहाँ से आ गया भाई, कुरान तो हमारे पास है, कौन सी ऐसी चीज है उनके पास के जो के उनके पास पहले भी थी, दरमियान में भी थी और आज भी है, यानी आखिरी जमाने में भी है, ड्रेसिंग नहीं, बल्कि जो उनको मुगीबात अता हुई थी, मुगीबात समझते हैं, जिन्होंने ज़ादु तालिबीन पढ़ी है ना उनको इस लफ्ज़ से अच्छी तरीके से वाकफियत है, मुगीबात के आगे क्या हालात होने वाले हैं, क्या हालात होने वाले हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी, ये उन्होंने चेंज नहीं किया, ये उन्होंने चेंज, इसी वजह से यहूद के पास नबी अलैहिस्सलाम की सारी निशानियां मौजूद थीं, कहां से आई वो सारी निशानियां उनके पास, जो उनके नबियों ने उनको बताई थी वो उन्होंने एज इट इज इंटैक्ट करके रखी हुई थी अपने पास, एक एक निशानी पूरी होती गई, एक एक निशानी पूरी होती गई, नबी अलैहिस्सलाम तो क्या, नबी अलैहिस्सलाम के खुलफा की सारी निशानियां उनके पास मौजूद थी इंटैक्ट, राइट, और सहाबाए कराम के बारे में निशानियां मौजूद थी इंटैक्ट, ठीक है ना, तो ये दरमियान का जमाना समझ लें, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना, आखिरी जमाना कि दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, किसकी किससे लड़ाई होगी, कौन क्या करेगा, आखिरी जो मसाया आएगा वो कहां से आएगा, वो क्यों आएगा, वो कैसे आएगा, राइट, दज्जाल कैसे आएगा, याजूज माजूज जो है ये कैसे आएंगे, ये सारी नॉलेज इनके पास मौजूद है, आज भी मौजूद है, और इसको इन्होंने खराब नहीं किया। भाई आवाम उन्नास की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही जाहिल होते हैं, उनको तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता है ना, इल्म तो बड़ों के पास होता है ना, इल्म वालों के पास, जो भी नाम दें उनको आप, ठीक है, तो उनके पास ये सारी की सारी नॉलेज एज इट इज मौजूद है, बल्कि अगर देखा जाए एक तरह से देखा जाए तो इवन अकायद की भी जो सही शक्ल है वो उनके पास मौजूद है, जो इनके बड़े इल्म वाले लोग हैं ना उनको तो अकायद का भी सब पता है कि कि क्या क्या बेड़ा गरक किया हुआ है उन्होंने अपने आवाम के और दूसरे लोगों के सामने चीजों का, लेकिन हकीकत क्या है, ठीक है। तो ये उन्होंने नहीं चेंज किया, ये तो आज भी मौजूद है, और वो उसके मुताबिक ही सारे हरकतें जो दुनिया में आपको नजर आ रही है ना, हम तो बेवकूफ है ना, हमने तो पढ़ के नहीं दिया, हमने तो मान के नहीं दिया ना कुरान को, हमने तो अपने नबी अलैहिस्सलाम की तो हम बात ही नहीं करते ना, हम तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों की बात ही नहीं करते, वो बात ही हमने इतनी छोड़ दी ना, हम तो बस अखबारात की बात करते हैं, हम तो बस न्यूज की बात करते हैं, हम तो बस जो है ना वीडियो फुटेजेस की बात करते हैं, राइट। ये हमारा मसला है कि हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं करते, हमें शर्म आती है, कितनी लंबी दाढ़ी क्यों ना हो लेकिन हमें शर्म आती है नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस के का जिक्र करते हुए। पता नहीं अजीब अजीब मामला हो गया, अजीब मामला हो गया भाई, वो गरीब मामला हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के हदीसों के अलावा सारी बातें करेंगे, सारे तज्जिये करेंगे, राइट। सारे जो है ना हमारे पास उल्टी सीधी सही गलत जो भी है, उसने ये इसलिए वजह से किया, उसने वो इस वजह से किया, उसने ये ऐसे किया, उसने वो ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन जहां नबी अलैहिस्सलाम की बात आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया था, या अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है और शैतान का निजाम ऐसा है, शर्म आने लगती लगती है हमें, जैसे कि लोग जो है ना वो हमें बैकवर्ड समझना शुरू कर देंगे, लोग हमें जो है वो पता नहीं दकयानूस समझना शुरू कर देंगे, अनरियलिस्टिक समझना शुरू कर देंगे, नॉन प्रैक्टिकल समझना शुरू कर देंगे। अगर हम अल्लाह का जिक्र भी बीच में ले आए, अगर हम शैतान का जिक्र भी बीच में ले आए, अगर हम दज्जाल का जिक्र भी बीच में ले आए, तो लोग है ना हमें सुनना छोड़ देंगे, हमारे YouTube चैनल के ऊपर लाइक्स नहीं आएंगे फिर शायद। बात समझ में आ रही है, क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसा नहीं है? हजरत इसको क्यों नहीं चेंज किया, ये तो आप बताएं ना, क्यों नहीं चेंज किया, जबकि अकायद चेंज करने से ज्यादा डरना चाहिए था अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से डरने का और किससे क्या ताल्लुक है भाई, ये को थोड़ी कि उन्होंने अल्लाह के खौफ से चेंज नहीं किया मुगी बात को, आप बताएं ना क्यों नहीं चेंज किया उन्होंने मुगी बात के इल्म को, क्यों नहीं चेंज किया, चले आप बताएं, फिर हम आपके पीछे छोड़ते हैं। मुगी बात को क्यों नहीं चेंज किया, अल्लाह के खौफ की वजह से चेंज नहीं किया, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, इस वजह से मुगीबात को चेंज नहीं करो, बाकी सब कुछ चेंज कर दो, क्यों नहीं चेंज किया उन्होंने मुगीबात की इल्म को। क्योंकि तैने कोई जवाब ही नहीं दे रहा, क्लास भी खत्म करनी है और आपको मेरे गले का हाल पता चल ही गया होगा। सो दे कैन आइडेंटिफाई देयर मसाया, सो क्या मसाया से क्या करेंगे, मासी है वो, मासी उनके घर के पोछा देगी आकर के, क्यों वो, व्हाट इज दैट टू डू विद नॉट चेंजिंग, दे बिलीव दैट इट्स सर्टन, नहीं इन वालों को तो बाकी चीजों का भी पता होता है कि दे आर सर्टन, कामयाब होने के लिए कहाँ, आखिरत में कामयाब होने के लिए, किधर कामयाब होने के लिए, ताकि अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बना सकें, स्ट्रैटेजी टू डू व्हाट, स्ट्रैटेजी टू डू व्हाट, राइट। देखें उन्होंने ये इसलिए नहीं चेंज किया ताकि वो दुनिया की हुक्मरानी पा सकें, और इसी दुनिया की मोहब्बत इतनी रासिख है उनके अंदर कि वो दुनिया भी अपने हाथ से जाने नहीं देते, जाने नहीं देना चाहते, और इसी बुनियाद पर वो समझते हैं कि उनको आखिरत भी मिलेगी, है ना। काफिरीन का हमेशा से ये नजरिया रहा है कि अगर जिसके पास दुनिया है उसी के पास आखिरत भी है, नई बात तो नहीं है कोई, हमेशा से कुफार का ये नजरिया रहा है कि जिसके पास दुनिया है उसी के पास आखिरत है, राइट। तो ये दरअसल दुनिया की मोहब्बत होती है, ये दरअसल दुनिया की मोहब्बत होती है कि दुनिया भी समेटो और अज्यूम करो कि इसी बुनियाद पर आखिरत मिली जाएगी, ये दुनिया की मोहब्बत होती है। दूसरे अल्फाज में इसको ये भी कह सकते हैं ये शैतान का धोखा होता है, शैतान ने इनको धोखा दिया है, क्योंकि ये भी तो बनी आदम ही है ना, ये क्रिश्चियंस और जूस और हिंदू और ये सब क्या है, ये बनी आदम नहीं है क्या, शैतान किसका दुश्मन है, मेरा दुश्मन है खाली, आपका दुश्मन है खाली, मौलवी का दुश्मन है खाली, नहीं शैतान तो बनी आदम का दुश्मन है, तो इसने इन बनी आदमों को धोखा दिया हुआ है दुश्मनी की वजह से अपनी, कि तुम दुनिया कमाओ, दुनिया पे कब्जा करो, और आखिरत तो तुम्हें गरीबी में मिल जाएगी, आखिरत तो तुम्हें ग्रेवी समझते ना, ग्रेवी मिल जाएगी, यानी असल सालन तो मिल ही जाएगी, सालन की ग्रेवी भी तुम्हें मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मुगीबात जो है ना इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मुगीबात के नॉलेज के जरिए से इन्होंने दुनिया पे कब्जा करना है, ठीक है। इस वजह से इसको उन्होंने ऐसे अपने सीने से लगाया हुआ है, और खाली सीने से ही लगाया हुआ, बल्कि इसके मुताबिक दे प्लान थिंग्स एंड दे एग्जीक्यूट थिंग्स। और हम बेवकूफ लोग हम समझते हैं कि बस ये ट्रेड वॉर्स कर रहे हैं, और ये जो है ना बस ये टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये जो है वो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, और ये पता नहीं क्या अय्याशी के पीछे पड़े हुए हैं। अब हमारी बेवकूफ़ी का हम क्या करें भाई, अल्लाह ताला अपने सलीम अता फरमा दे, तो यही दुआ कर सकते हैं, ठीक है। इस बात के कई क्या कई इस बात का इहतमाल है कि इसी शैतान के धोखे के तहत कुछ तब्दील किया होगा। क्या इस बात का इहतमाल है कि इसी शैतान के धोखे के तहत कुछ तब्दील भी किया होगा? हाँ, तब्दीलियां हुई भी हैं, ठीक है। जाहिर है धोखा दिया हुआ है, तो उस धोखे में उसने दुनिया के ऊपर कब्जा करने के जो इनको तरीके बताए हैं, तो उसके अंदर भी ऐसी तब्दीलियां उसने करी हैं कि जिसकी वजह से इनका यानी ये जाए, बस बेड़ा गर्क बेसिकली इनका हो जाए, ठीक है। तो अगरचे कि इनके पास मुगीबात का बहुत ज्यादा इल्म मौजूद है, लेकिन शैतान ने आखिर की कुछ चीजें ऐसी चेंज कर दी हैं कि जिसकी वजह से इनका बेड़ा गर्क हो जाए। इस वजह से दज्जाल के ऊपर ईमान भी लेकर के आएंगे, कब्जा भी इनका काफी हद तक हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो इन्हें जहन्नुम में ही जाना है ना, दुनिया में भी इनको काम नाकामी होना है, दज्जाल ने मारे जाना है बिलाखिर, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी सारी चीजों में इन्होंने बिलाखिर मारा ही जाना है, सही है। और जहन्नुम जाने मरने के बाद भी इनको कोई कोई चीज हाथ नहीं आनी उनके, ठीक है। बहरहाल ये सारी जो कहानियां और बातें हमने आपके साथ करी है ना, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि भाई हमने हम दीनदारों ने और मौलवियों ने सो कॉल्ड है ना, और मौलवियाइयां जो हमारी खवातीन हैं, ठीक है, हमने जो कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म रवा किया हुआ है ना, उस जुल्म से हम तौबा करें। जो हमने कुरान का हक उठा करके, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों का हक उठा करके अखबार को दे दिया है, मीडिया को दे दिया है, ये हमने इतना बड़ा जुल्म किया है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, बल्कि अपने साथ। अल्लाह उसके रसूल के साथ क्या जुल्म करेंगे, अपने साथ हमने इतना बड़ा जुल्म किया है कि जिसकी पादाश में जो है ना वो हमें जिल्लत ही मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलता। हम खत्म करें ये जुल्म, कुरान और सुन्नत को वो मुकाम दें जो कि वो डिजर्व करते हैं, और मीडिया को सिर्फ उतना मुकाम दें जितना कि वो डिजर्व करता है, विच इज फतबैयन। मीडिया ये डिजर्व करता है, फतबैयन, बिलीव ना करना उसके ऊपर, बिलीव ना करना उसके ऊपर, ये मीडिया डिजर्व करता है, ठीक है जी। तौबा करेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह ताला वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।